हाँ, हमने शायद 1 महीने से ये शुरू किया है और हमारे करीबन 4 सेशंस हुए हैं और हमने बागवत
अच्छा
पाठमाला से शुरू किया है। अभी दिनेश जी और करण जी जो जयपुर में अभी ऑनगोइंग शास्त्री हैं, वो उन्होंने अभी पढ़ रहे हैं, वो हमारे सेशंस ले रहे थे और करण जी ऑलरेडी वो शास्त्री हो गए, उन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो हमने बागवत पाठमाला से शुरू किया
वंडरफुल।
था।
तो आज अपने को किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है? कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के, या वैसे ही अपन बात करें? कोई डाउट वगैरह कुछ पूछना हो लास्ट कक्षा के बारे में, कुछ जरूरी हुआ हो?
लास्ट टाइम तो हम नीलेश जी से बात किए, वो महाफाल्गुनी मंदिर मुंबई से, उन्होंने बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए। नमोकार मंत्र और उनके उच्चार मंगल और वो सब लिया था उन्होंने, और उन्होंने सब कुछ डिटेल में समझाया था। तो शायद अब अगर हो सके तो हम वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं आज।
नवकार मंत्र के ही चर्चा करें, मतलब अपन
नवकार
हाँ,
मंत्र और चार मंगल किया था।
देखिए मैं चार मंगल की भी बात हुई होगी। देखिए नवकार मंत्र और चार मंगल के बारे में थोड़ी बहुत मैं बात करता हूँ, और
हाँ
इस बीच में दौरान यदि किसी के भी कोई भी प्रश्न यदि हो, कोई शंका यदि हो, तो आप लोग बीच में भी मेरे को रोक सकते हैं। और बिल्कुल इस तरह से अपने को बात करनी है, मान लीजिए कि जैन दर्शन क्या है, जैन दर्शन का स्वरूप क्या है, और नमोकार मंत्र में किसकी चर्चा की गई है, इन जिनको नमस्कार किया गया है वो नमस्कार क्यों किया गया है नमोकार मंत्र में, मतलब ये पंच परमेश्वर होते कौन है, इनका स्वरूप क्या है, ये पूज्य क्यों है, हम इन्हें नमस्कार क्यों करते हैं आखिर, मतलब ये पंच परमेश्वर ऐसे क्या किया इन्होंने, ऐसी क्या विशेषता रही इनकी जो ये सब पूज्य हो गए हैं, महान हो गए हैं। नमोकार मंत्र तो आई थिंक सभी लोग जानते ही होंगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सव्यताहुणम, इन पांच चीजों को इसमें नमस्कार किया है। पांच पद हैं ऐसे, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच पद हैं जिन्हें नमस्कार किया है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इनको नमस्कार क्यों किया गया है, आखिर ऐसा क्या किया इन्होंने जिससे ये नमस्कार करने योग्य हो गए, जिससे ये पूज्य हो गए। किसी
बराबर
मिनिस्टर को क्यों नहीं नमस्कार किया, फिर राष्ट्रपति को क्यों नहीं नमस्कार किया, फिर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं नमस्कार किया इसने?
उन्होंने
बहुत
बोला
बड़े बड़े नेता
श्रेष्ठ।
हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं दुनिया में, माने देखिए दो चीजों के आधार पर कोई भी व्यक्ति पूज्य होता है, नमस्कार करने योग्य होता है। दो विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति में, महान बनने के लिए, दूसरों के द्वारा पूज्य होने के लिए। पहली चीज तो ये कि ज्ञान विशेष होना चाहिए, और दूसरी चीज राग द्वेष का अभाव होना चाहिए।
बराबर
माने राग द्वेष के अभाव को यदि अपने सैद्धांतिक शब्दों में कहें, टेक्निकल भाषा में यदि कहें, तो हम कहेंगे वीतरागता। और ज्ञान की विशेषता को यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं सर्वज्ञता या विज्ञान, विशेष ज्ञान। ये दो बातें, ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। जिस किसी व्यक्ति में ये दो चीजें मिल जाएगी, वो व्यक्ति अपने आप ही पूज्य हो जाएगा, अपने आप ही महान हो जाएगा। मैंने किसी भी व्यक्ति की महानता का जो आधार है, महानता का आधार है वितराग और विज्ञानता। आप देख लीजिए दुनिया में आपको कौन व्यक्ति महान दिखाई देते हैं, आपकी दृष्टि में जो भी व्यक्ति महान दिखाई देते हो, जिन्हें आप जानते हो, जो आपके मॉडल रहे हो, समझिए आप आदर्श हो, जिन्हें दुनिया में पूज्य समझा जाता है, महान समझा जाता है, किसी भी देवता के रूप में पूजा जाता है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, या समझिए आप जैसे महात्मा गांधी, नाम सुना होगा आपने।
हाँ,
महात्मा गांधी की महानता के पीछे क्या आधार रहा? एक तो ज्ञान उनका विशेष था, और दूसरी बात क्या कि उन्होंने छुआछूत का निषेध किया, जातिवाद का निषेध किया। ये कुछ वितरागता का अंश और वितरागता के लक्षण से उन्हें दिखाई दिए कि वे महान हो गए। असली वितरागता तो भी समझते ही नहीं है, असली राग द्वेष का अभाव तो उनको दिखाई जानते ही नहीं है वो क्या होता है। दुनिया में द्वेष के अभाव की चर्चा करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन राग भी करने योग्य नहीं है। राग और द्वेष दोनों ही बुरे हैं, राग और द्वेष दोनों ही फंसाने वाले हैं, राग और द्वेष दोनों ही कषायें हैं, विभाव है, ऐसी चर्चा करने वाले और राग द्वेष जिनके जीवन में से निकल गया हो, ज्ञान की विशेषता जिनके जीवन में प्रकट हो गई हो, अंतरंग ज्ञान जिनके जीवन में दिखाई देता हो, ऐसे ये पांच ही जीव हो सकते हैं दुनिया में, पांच ही पद हो सकते हैं ये, जिन पदों में धारी वितरागी होंगे और विशेष ज्ञान वाले होंगे, यही पूज्यता का आधार हो सकता है। आप देख लीजिए, चाहे वो वर्णी जी हो, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, ऐसे जो भी महापुरुष हमारे को दिखाई देते हैं। और तो और यदि मैं बात करूं, ईसा की बात करूं, मोहम्मद साहब की बात करूं, तो उन लोगों की भी जो महानता का आधार रहा है, गौतम बुद्ध की यदि मैं बात करूं, ये लोग महान किस वजह से हो गए हैं। और ये आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो बहुत सारे संत साधु ऐसे दिखाई देते हैं जो जातिवाद से उठ करके बात करते, ऊपर उठ करके बात करते हैं, तो लोगों की दृष्टि में वो महान हो जाते हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की विशेषता होगी और जो व्यक्ति इन राग द्वेष और भेदभाव से ऊपर उठ के बात करेगा, वो व्यक्ति अपने आप ही महान हो जाएगा। महानता का आधार ही यही होता है। तो ये जो पांच परमेष्ठी हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांचों व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें किसी प्रकार के राग द्वेष की गुंजाइश जिनके जीवन में नहीं दिखाई देती है। अरिहंत और सिद्ध ये तो देव हो गए हैं, ये तो भगवान हो गए हैं, परमात्मा बन गए हैं। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो तीन पद हैं, ये तीन पद अभी संसार दशा में हैं, सन्यासी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, गृह त्यागी हैं, घर में जिन्होंने त्याग कर दिया है, घर बार का त्याग किया है, परिग्रह का त्याग किया है, पांच महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, हिंसा जिनके जीवन में नहीं है, झूठ जिनके जीवन में नहीं है, चोरी कुशील परिग्रह का जिन्होंने अभाव कर दिया है पदा पदा के लिए अपने जीवन से, किसी से किसी तरह का कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, परिवार से राग नहीं है, मित्रों से राग नहीं है, शिष्यों से राग नहीं है, शत्रुओं से द्वेष नहीं है, इससे राग द्वेष से रहित हो गए हैं, ये उनकी पूज्यता का आधार है। वास्तव में माने वितरागता और विशेष ज्ञान, ये दो ऐसी आधारभूत विशेषताएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान और पूज्य बना देती है। इसलिए हमारे भगवान, ये भगवान अरहंत और सिद्ध तो भगवान है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये भगवान बनने का मार्ग है। मुनि अवस्था से मुक्ति की प्राप्ति होती है और इसलिए हम उनके चरणों में झुकते हैं। कोई कहे कि साहब भगवान कुछ देते हैं क्या, भगवान को नमस्कार क्यों करें? अरिहंत और सिद्ध, प्रणमो अरिहंतानम, अरिहंतों को नमस्कार हो, प्रणमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार हो, प्रणमो आर्यानम, आर्यानम आचार्यों को नमस्कार हो, नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और नमो लोहे सव्यताहुनम, लोक के जितने साधु हैं उन सब साधुओं को नमस्कार हो। देखिए बहुत से लोग नमो लोहे सव्यताहुनम का बहुत गलत अर्थ करते हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात की तरफ कि नमो लोहे सव्यताहुनम का अनेक प्रकार से लोग अर्थ करते हुए कुछ ऐसी महानता प्रदर्शित करते हैं कि जैन दर्शन कितना महान है। क्या कहते हैं? जैन दर्शन कितना महान है, देखो आप, प्रणमो लोहे सव साहुरम, प्रणमो अर्थात नमस्कार करता हूँ, लोहे अर्थात लोक में लोक के, सव मतलब सभी, साहुनम मतलब साधुओं को, जैन परंपरा में देखो आप लोक के सब साधुओं को नमस्कार किया है। हीरेश भाई क्या लगता है आपको, क्या ऐसा ही अर्थ है? दुनिया में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी सन्यासी हैं, जितने भी तपस्वी हैं, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय वाले हों, सब साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा ही अर्थ है इसका?
नहीं, ऐसा नहीं,
ऐसा अर्थ बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अरे भाई, यहाँ तो उन साधुओं को नमस्कार किया है जो साधु अरिहंत और सिद्धों की श्रेणी में आने वाले हैं। एक धारा प्रवाह से, एक लाइन से जिन्हें नमस्कार किया है, जिस लाइन में अरंत भगवान बैठे हुए हैं, जिस लाइन में सिद्ध परमात्मा बैठे हुए हैं, उसी लाइन में बिठाया है आचार्य उपाध्याय साधुओं को, कोई फर्क नहीं है। उन साधुओं की बात कर रहे हैं हम जो साधु अरंत और सिद्धों की कैटेगरी वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो कदम बढ़ा करके आचार्य होने वाले हैं, जो कदम बढ़ा करके अरिहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति करने वाले हैं। रागी द्वेषी साधुओं की बात नहीं हो सकती है। कपड़े पहने हुए राग द्वेष से सहित कषायों से युक्त ऐसे ऐसे साधु सन्यासियों की बात नहीं हो सकती है। यहाँ तो वितरागियों की बात है, जिनके जीवन में वितरागता प्रकट हुई है, जो वितरागता की चर्चा करते हैं, राग द्वेष के अभाव की चर्चा करते हैं। ठीक है, राग द्वेष से आपकी इतनी क्या दुश्मनी है जो राग द्वेष के अभाव की बात करते हो आप? क्या हो गया यदि राग द्वेष है तो? देखिए, राग द्वेष का दूसरा नाम है आकुलता, कषाय, टेंशन, दुख, तकलीफ, परेशानी। राग द्वेष का अभाव माने परेशानियों से मुक्ति, राग द्वेष का अभाव माने टेंशन से मुक्ति, राग द्वेष का अभाव माने कषायों से मुक्ति, राग द्वेष का अभाव माने आकुलता से मुक्ति। द्वेष से मुक्ति को तो सारा जगत कहता है, द्वेष से मुक्ति की चर्चा तो सब कहता है। द्वेष माने विरोध, दुश्मनी, शत्रुता। शत्रुता को मिटाने की बात तो हर व्यक्ति करता है, सभी कहते हैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। अपनी तो किसी से दुश्मनी नहीं है भैया, अपन तो सबके साथ में प्रेम से रहते हैं और सबके साथ में अपना बहुत अच्छा रिलेशन है, सबसे अच्छी बना करके चलते हैं अपन तो, सबसे बात करते हैं, सबसे बोलते हैं, सबसे अच्छे हंसी खुशी रहो, प्रेम से रहो। लड़ाई झगड़े का क्या काम? लड़ाई झगड़े को बुरा कहेंगे और प्रेम से रहने को, रात करके रहने को सब अच्छा कहेंगे। लेकिन ये जैन दर्शन की कुछ एक ऐसी विशेषता है कि भैया राग और द्वेष ये दोनों जुड़वा भाई हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष हुए बिना रहता नहीं है। यदि आप द्वेष को बुरा कहते हो और राग को भला जान करके चाहते हो तो ये चलेगी नहीं बात। द्वेष के समान ही आपको राग को भी बुरा जानना पड़ेगा। अकेला द्वेष को बुरा जाने और राग को भला जाने ऐसा नहीं चलेगा। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ द्वेष नियम से होता ही होता है। राग और द्वेष छोड़ करके साथ में ही रहते हैं हमेशा। इसलिए जो राग और द्वेष से रहित है ऐसी ये पांच परमेष्ठी हैं, जिन पांच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है इस पंच नमस्कार मंत्र में। शाश्वत मंत्र है, अनादि अनिधन है। कई बातें आपने तीन चार पीरियड संबंध में हो चुके हैं, आपने काफी बातें इनके बारे में सुनी होगी। क्या है इनका स्वरूप, अरिहंत कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, चार घातीय कर्मों का नाश करने वाले अरिहंत हैं, आठ कर्म जिनके अभाव हो गए हैं वे सिद्ध हैं। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो ये कहें कि हमें क्या मतलब है उससे, हमें क्यों अरिहंत का स्वरूप बतला रहे हो, हमें क्यों सिद्धों का स्वरूप बतला रहे हो, हमारे सामने क्यों पंच परमेष्ठी की चर्चा कर रहे हो, हमें क्या लेना देना है, हमें सुखी होना है, एक ही मात्र प्रयोजन है ना सबका, दुनिया में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, क्यों पंच परमेष्ठी की चर्चा करना, बोलो।
हमें उन्हें बनता है,
बाकी युवा ऐसे भी होंगे। हाँ जी,
हमें भी उनसे बताए हुए मार्ग पर चलना है तो सच्चा सुख मिलेगा
क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हर व्यक्ति ये बात नहीं समझता है ना। लोग तो ये कहते हैं कि साहब क्या चलेगा, किस चीज का लेक्चर होगा ये बतलाओ हमारे को, बिजनेस मैनेजमेंट संबंधी हो कोई हमारे को ऐसा लेक्चर दे रहे जिससे हमारा बिजनेस बढ़ने लगे, कोई ऐसा लेक्चर दे रहे जिससे हम हमारी इनकम बढ़ने लगे, हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़े हमारे में, कुछ ऐसे कुछ मोटिवेशनल लेक्चर हो तो हम उन चीज़ों को अटेंड कर सकते हैं। अब ये क्या धर्म है इनमें पंच परमेष्ठी और नमोकार मंत्र और क्या धर्म और क्या, आज का युवा इन सब बातों से दूर हटना चाहता है। पता नहीं आप लोग कैसे इन चीज़ों से जुड़ गए हैं, लेकिन मैं तो इतने सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, बाहर गाँव गाँव शहरों में घूमते हैं, यहाँ हर जगह युवा वर्ग पीछे हटना चाहता है इन सब बातों से। लेकिन युवाओं को इकट्ठा करके मैं एक ही बात कहता हूँ कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए पहले ये नक्की कीजिए। आपका लक्ष्य क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी मंजिल कौन सी है, फाइनली एक शब्द में मेरे को जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं, बोलो क्या जवाब हो सकता है?
सुख।
सुख
डिटेल में तो आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, नौकर चाकर हो हमारी, एक रेस्पेक्ट हो हमारी, हमारा मान सम्मान हो, ख्याति हो दुनिया में, लोग हमारे को चाहें जाने, और पता नहीं क्या क्या बातें आप कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है। हो सकता है आप लंबा चौड़ा एक निबंध लिख देना उसके बारे में, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ मेरे को दो शब्द में एक शब्द में जवाब दीजिए, आप क्या चाहते हैं?
अविनाशी
जो कुछ भी चाहते हैं वो सब एक एक चीज में गर्भित हो जाए। सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, बोलो। दुनिया का हर व्यक्ति सुख चाहता है। अब वो सुख के मापदंड सबके अलग अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति की दृष्टि में सुख अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मुझे लगता है पैसे में बहुत सुख है, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं मान प्रतिष्ठा में बहुत सुख है, कोई कह सकता है कि नहीं अपनी फैमिली के साथ में रहने में सुख है, कोई व्यक्ति कह सकता है कि नहीं नहीं लोग हमारा सम्मान करें, कोई कहे कि नहीं नहीं हमारे को पद मिल जाए तो हमारे को बहुत सुख है, कोई ये सोच सकता है कि हमारा बिजनेस बहुत बड़े से बहुत सुखी हो जाए। ये सुख के प्रकार और सुख को देखने के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फाइनली सबका जवाब तो एक ही होगा कि हमें सुखी होना है। इसमें यदि किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बात करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
नहीं ठीक है, बराबर
बराबर है ना, सबको सुखी चाहिए ना। और भी कोई है हरीश भाई, और कौन है एक आध दो साथी अपने? देखिए
प्रतीक, प्रतीक है और प्रतीक वीडियो कौन सर क्या?
वी हैव अमिशा राइट, यहाँ बिजू प्रमोद भाई छे, उषा बहन छे, अतुल
भाई, भाई आपके ख्याल में तो आ रही है बात?
हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है।
प्रतीक भाई आपसे बात कर रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ कुछ कठिन बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कोई धर्म की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते क्या है, फाइनली हमारा लक्ष्य क्या है, हम कौन सी जगह पर पहुँचना चाहते हैं, किस मंजिल पर हम पहुँचना चाहते हैं। यदि हमें सुखी होना है वास्तव में तो फिर एक ही चीज को अपन डिस्क्रिप्शन करते चले, अपन एक ही चीज का उसकी गहराई में जाते जाएं हम, जिस किसी भी चीज में हमारे को सुख लगता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी बात चीज की बात करूं तो मान लीजिए हमारे को लड्डू खाने में सुख लगता है, लगता होगा किसी को, कोई मिठाई अच्छी लगती होगी, नमकीन अच्छी लगती होगी, इडली सांभर अच्छे लगते होंगे, डोसे अच्छे लगते होंगे, मालूम क्या क्या कुछ भी खाने की चीज लग सकती है ना,
बराबर
सुख की बात कर रहे हैं अपन। सुख कहाँ है, हम कौन सी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, किस जगह तक पहुंचे, मैं उस सुख का लेवल जानना चाहता हूं कि जिस जगह पर हम पहुंचना चाहते हैं, कौन से लेवल पर पहुंच करके हमारे को सुख मिलेगा। एक एक चीज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के बतला रहा हूं आपको खाने की किसी एक चीज के बारे में, आप इस चीज को अप्लाई करें हर चीज के ऊपर और फिर डिसाइड करें कि सुख कहाँ है और कौन सा सुख हमारे को चाहिए। कोई फाउंडेशन नहीं है किसी के ऊपर, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, विचार करने के लिए स्वतंत्र है, चिंतन करने के लिए स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने विचार है, सबका अपना अपना चिंतन है। लड्डू पसंद है किसी को?
हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है,
अच्छे लगते हैं।
हाँ हाँ
हाँ जी बराबर,
तो मिले तो खाएंगे आप, कितने खा सकते हैं? अच्छा एक बार बताइए, लड्डू देखते ही मजा आ जाता होगा, जिनको लड्डू खाने का शौक है कि सामने से लड्डू दिखाई दे तो दिखने में ही एक बार तो चेहरा खिल जाता है, चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है, अरे लड्डू आ गया, मजा आ गया।
बराबर बिल्कुल,
अब मैं कह रहा हूँ लड्डू के देखने पर जो मजा आया है, आया है नहीं, देखते ही मजा आया है नहीं?
हाँ
अरे पंडित जी आप देखने की बात कर रहे हो, लड्डू की चर्चा करने में मजा आता है? बोलो लड्डू की चर्चा में मजा आ रहा है, लड्डू को देखने में मजा आ रहा है। मैं आपसे अगला प्रश्न करता हूँ, लड्डू को देखने में भी मजा आ रहा है ना सुरेश भाई, तो फिर आप सिर्फ लड्डू को देखना उठाना मत। नहीं नहीं ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, यदि देखने में सुख मिल रहा है तो हम उस लड्डू को उठाएंगे नहीं कि नहीं नहीं ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, देखने में थोड़ी मजा आता है, तो चलिए कोई बात नहीं उठा लीजिए उसको, लेकिन ध्यान रखिएगा उठाने में यदि मजा आ रहा है तो मुंह में मत रखिएगा। हम देख रहे हैं कौन सी जगह पर हमारे को सुख मिलेगा, चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, यदि मुंह में रखने में आनंद आ रहा है तो सिर्फ मुंह में रखिएगा, उसे चबाइएगा नहीं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं चबाई देना कैसे चलेगा, चबाने में आनंद आता है, तो मैं कहता हूँ चबाइए, यदि चबाने में आनंद आता है तो सिर्फ चबाते रहिए, उसको निगलना नहीं। कितने स्टेज हैं उसमें? लड्डू का दिखना, लड्डू का उठाना, लड्डू का मुंह में रखना, लड्डू का चबाना और लड्डू का निकल जाना। यस, नेक्स्ट प्रश्न मेरा, कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा सुख है?
सभी जगह के अपना अपना
बात कर रहे हैं आप है? सब जगह पर अपना अपना ही आपके अलग है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में भी सुख है, यदि हम ये बात समझते हैं कि ये पूरी जो प्रोसेस है इसमें भी सुख है, आनंद है, मजा आया है, तो इसी प्रोसेस को दोबारा दोहराते हैं हम। एक और लड्डू पेट चला गया पेट में, अब दूसरा वापस इसी प्रोसेस को हमने दोहराया। मेरे ख्याल से सुख डबल हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार जितना सुख था दूसरी बार उससे डबल हो गया है। चलो तीसरी बार फिर वापस दोहराते हैं इसी प्रोसेस को। दस पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं आप? एक दो तीन चार, बस बस, अब बाद में कि क्यों क्या हुआ, अब वो सुख कहाँ चला गया? देखिए हमारे को कुछ देर तो उसमें लगता है मजा आ रहा है, कुछ देर तो लग रहा है कि सुख मिल रहा है, कुछ देर तो लग रहा है अरे यार बहुत अच्छी चीज है यार, लड्डू में तो मजा आया था, अरे वास्तव में मम्मी के आपके लड्डू तो गजब, क्या बनाती है मम्मी, अरे यहाँ तो क्या चीज, और सर्दियों के दिन में बनने वाले लड्डू तो एक से एक, अलग अलग वेराइटियाँ और उसके अंदर अलग अलग तरह के मेवे डले हुए और उसकी तो मिठास बिल्कुल, जैसे नाम लेते ही जैसे मुँह में पानी आने लगता है, ऐसा लगता है हमारे को। लेकिन भाई साहब ये सब भ्रम है, वास्तव में हम सुख की तलाश कर रहे हैं, आपको कैसा सुख चाहिए, कौन सा सुख चाहिए आपको, कितनी मात्रा में चाहिए और कब तक चाहिए, कितने परसेंटेज में चाहिए। जैसे मैंने बात कही ना लड्डू के बारे में, आप दुनिया की हर चीज के बारे में लगा सकते हैं, अब एक ही चीज के बारे में लगाते रहिए। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं युवा हूँ, मैं कंपटीशन एग्जाम दे रहा हूँ, मेरा ऐसा चल रहा है, अभी स्टडी चल रही है, पढ़ाई चल रही है, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप करना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बोलो सोच सकते हैं बहुत कुछ, सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से सोचता है और अपने ड्रीम को यथासंभव सफल करने का भी प्रयास करता है, और लग जाते हैं हम बिल्कुल अपने सपने को साकार करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। पागल की तरह पुरुषार्थ करने लगते हैं, पीछे पड़ जाते हैं उसके लिए, बिल्कुल दिन रात एक कर दिए हमने, लग गए हैं उसके लिए एकजुट होकर के, किस लिए, मेरिट में नंबर आना चाहिए मेरा, टॉप करना है मेरे को, यूनिवर्सिटी टॉप करना है मेरे को। जितने स्टूडेंट बैठेंगे सब में सबसे टॉप नंबर आना चाहिए मेरा, चलिए कोई बात नहीं, आज तो लग गए मेहनत करने के लिए। कितने समय बाद में एग्जाम? 6 महीने बाद में। ओके, 6 महीने तक खाना पीना अवॉइड कर दिया, घूमना अवॉइड कर दिया, फैमिली में रिलेशन में किसी की शादी हो, मैरिज हो, घूमना फिरना, पिक्चर, टीवी, ये वो सब बंद, क्यों? क्योंकि एक ही लक्ष्य है हमारा, कौन सा? मैरिट में आना, टॉप करना है हमारे को, ये है हमारा लक्ष्य है हमारा। चलो कोई बात नहीं, 6 महीने तक दिन रात एक किए, कड़ी मेहनत की और वो घड़ी आ गई जो परीक्षा की घड़ी थी, और उस घड़ी में परीक्षा भी दी हमने और रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट क्या रहा, जैसा हम सोचते थे वैसा ही हुआ, यूनिवर्सिटी में हमने टॉप कर दिया। बोलो कितनी खुशी होगी, कितना मजा आएगा, चाहा वो मिल गया ना हमारे को, अब तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है ना, जो चीज हम चाहते थे वो चीज हमारे को मिल गई ना। बहुत लंबे समय से जिस चीज की मुझे तलाश थी, जिस चीज की मुझे चाह थी, जिस चीज मैं चाहता था, 6 महीने से दिन रात जिसके लिए मैं एक कर रहा था, वो चीज मुझे मिल गई, कितनी खुशी होगी, नो डाउट आपको बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन मैं सिर्फ इस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आपकी वो खुशी कितने दिन रहेगी। 6 महीने की खुशी 6 दिन भी नहीं चलती है भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने टॉप किया यदि इस बात का पता नहीं लगा, अभी देखो रिजल्ट आने के तुरंत बाद से दूसरी टेंशन चालू हो गई, अब लोगों को बताना है कि मैंने टॉप किया है, किसी को पता ही नहीं होगा, कोई मुझे बधाई नहीं देगा, किसी व्यक्ति ने मेरी तारीफ ही नहीं करी, किसी ने प्रशंसा ही नहीं करी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी का कॉल ही नहीं आया मेरे पास में, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, किसी ने शाबाशी नहीं दी मेरे को, मुझे लगता है भाई क्या हुआ, बेकार हो गया मेरा डॉक्टर में। फिर कोई व्यक्ति यदि नहीं कह रहा है, किसी व्यक्ति को पता नहीं है तो आगे होकर के कहना चाहते हैं, अरे तुम्हें पता है मेरा रिजल्ट आ गया, सामने वाले ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, आ गया होगा ठीक है, अरे नहीं नहीं मैंने टेस्ट किया है, अच्छा बहुत बढ़िया, रूखे मुंह से उसने कह दिया, हमारा क्या हाल होता है। माने वो खुशी ज्यादा लंबे समय तक चलती नहीं है, और फिर पता है क्या होता है, तुरंत ही दूसरी बात चालू हो जाती है, अब आगे क्या करना है, आगे की क्या प्लानिंग है हमारी, अभी अभी तो हमने टॉप कर लिया, आगे हमारी क्या प्लानिंग है बोलो, नेक्स्ट से नेक्स्ट चीज चलती चली जाती है, सोचो आप सुख कहाँ है, सच्चा सुख मिलेगा कहाँ, सच्चा सुख कहाँ मिलेगा, सोचा है क्या आपने कभी, सच्चे सुख की तलाश कर रहे हैं अपन, वास्तव में सुख है कहाँ पर, कौन सी जगह पर है, कौन सी स्थिति पर जाकर के सुख मिलेगा। आप पैसे में सुख की बात कर लीजिए, कोई बात नहीं, कितने में मिलेगा, चलो पैसे में सुख की बात करें अपन, 1 करोड़ में है, 2 करोड़ में है, 5 करोड़ में है, 25 करोड़ में है, 1,000 करोड़ की बात करें, 5,000 करोड़ की बात करें, कितने कितने बोलो आप, कहेंगे वहीं रुक जाते हैं, उसके बाद में कितना आपके पास में दिलवा देते हैं चलिए, तो उसके बाद में आप क्या कहेंगे, फिर तो सुखी है ना, फिर तो दुनिया में सबसे सुखी आप हो जाएंगे ना। नहीं है भाई साहब, नहीं है, इस चीज में सुख नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ से ऊपर उठिए, इससे आगे बढ़कर के देखिए, इसलिए आरंभ सिद्ध आचार्य उपाध्याय प्रावीण पंच परमेश्वर को नमस्कार करने की बात कही है, कुछ ऐसी चीजें उनके पास में, कुछ ऐसा तत्व उनके पास में है, कुछ ऐसी क्वालिटी उनके पास में है, जिस क्वालिटी की वजह से वे पूज्य हो गए हैं, महान हो गए हैं, सुखी हो गए हैं, घर बार में रहते हुए जितना सुख नहीं था, घर के त्याग करने के बाद में उतने सुखी है, कुछ तो है यार बात, नीरज भाई कुछ तो है यार चक्कर, मैं बहुत सोचता हूँ कभी कभी इस चीज के बारे में, आखिर बात क्या है, आखिर क्या मिल गया है उनको, खाना पीना नहीं छोड़ता है, बिजनेस नहीं छोड़ता है, सब छोड़ दिया है उन्होंने, और किसके लिए छोड़ दिया, मिला क्या उनको बोलो, हाथ में पीसी और कमंडल, बस पीसी कमंडल में कुछ दम है क्या, नहीं नहीं कुछ और बात है यार, बात ये नहीं हो सकती है, कुछ और होना चाहिए, कोई एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो चीज उनको मिल गई है, जो चीज उनके पास में है, और वो चीज अपने को दिखाई नहीं दे रही है, हम उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं, वो एक्चुअल में चीज क्या है जो चीज उनके पास में है, जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे हैं, और ये जो चीज उनके पास में मौजूद है, माने ऐसा क्या है, चलो कुछ तो होना चाहिए ना, हमें दिखाई नहीं दे रही है और उनके पास में है, किसे शांत दिखाई दे रहे हैं, हमारे से एक मोबाइल चोरी चला जाता है तो हमारे से रात को नींद नहीं आती है, हमारी घड़ी टूट जाए तो हमारी नींद गायब हो जाती है, बोलो बिजनेस में लॉस लग जाए तो हमारे से पता नहीं कितने कितने दिनों की नींद खराब हो जाएगी, हमारी सोना उठना बैठना हमारा चैन ही चला जाएगा, ऐसा क्या है उनके पास में, सब कुछ छोड़ करके भी सुखी है, कुछ नहीं है तब भी सुखी है, तब भी संतुष्ट है, सभी आनंदमय है, कुछ तो है बात, और वो बात क्या है, बस वो जो भी बात है समझ लीजिए आप, बस ये वही उनकी पूज्यता और महानता का कारण है। हम नमस्कार करते हैं उस दशा को, जिस दशा को उन्होंने अपने आप से अंगीकार किया है, देखो आप उनकी दशा, आखिर ऐसा कैसा सुख है उनके पास में, आखिर ऐसे कैसे सुखी हो गए हैं, क्या आनंद मिलता होगा भाई, कुछ भी नहीं है फिर भी आनंद, और सब कुछ है फिर भी दुखी है, गजब हो गया, सब कुछ है फिर भी दुखी है, और कुछ नहीं है फिर भी सुखी है, इसका मतलब कुछ होने या नहीं होने से सुख का संबंध नहीं है, सुख का संबंध किसी और चीज से है, कोई और चीज ऐसी है जो उनके पास में मौजूद है, कोई ऐसी चीज है जो उनके पास में है और हमारे पास में नहीं है, कुछ ना कुछ तो है ऐसा, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो हमारे पास में नहीं है, बोलो ऐसा क्या है जो हमारे पास में नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, विषयों में सुख मानने की जो हमारी कल्पना है ये बहुत बहुत बड़ी विपरीत कल्पना है, महामिथ्या मान्यता है ये हमारी, और सच्चाई भी है, जैसे मैंने भी दो चार विषयों के बारे में बताया है, आप इन विषयों के बारे में थोड़ा गंभीरता से विचार करके देखेंगे तो आपको हर चीज में ख्याल में आएगी ये बात, आपको दिखाई देने लगेगी, आपको जहाँ सुख लगता है उस चीज में देखिए आप कितनी देर सुख लगता है, फिर देखिए आप इनको देखिए आप, और वर्षों तक बैठे रहे ज्ञान अवस्था में बैठे रहे, ज्ञान ध्यान में लीन रहे और सुखी हो गए, परमात्मा बन गए, पूज्य हो गए, अरिहंत दशा की प्राप्ति हो गई, अनंत सुगुण के जीवन में प्रकट हो गया है, विचारी हो गए, जगत से कुछ लाग लपेट नहीं है, दुनिया वाहवाही कर रही है उससे भी उनको कोई मतलब नहीं है, प्रशंसा करने वाले हो तो ठीक और नहीं हो तो ठीक, निंदा करने वाले हो प्रशंसा करने वाले हो दोनों में संभाव रखने वाले कैसे होते होंगे महामुनिराज भाई, कैसा होता होगा आचार्य उपाध्याय साधुओं का स्वरूप, कैसा होता है उनका जीवन, मैं तो सोच सोच करके दंग रह जाता हूँ कई बार, तो कैसा जीवन होता होगा उनका, ये कुछ बातें हैं जो हमारे को सोचने पर मजबूर करती है, जो हमारे को प्रेरित करती है कि भाई सोचो आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो, आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं वो दिशा कहाँ तक जा रही है, आप जिधर जा रहे हैं जिस किसी भी दिशा में जा रहे हैं जहाँ तक भी आप जा रहे हैं कहाँ तक जाएंगे, लास्ट स्थिति क्या होगी आपकी, आखिर दौड़ते दौड़ते कहाँ तक पहुँचेंगे, और फिर उसके बाद 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 तक लास्ट कहाँ है, अंत कहाँ है इन सब चीजों का, कुछ लोग जवाब दे देंगे कि क्या अंत है, आखिर अंत में तो सबको शमशान ही पहुँचना है ना, उसके बाद मैं कह रहा हूँ उसके बाद की भी सोचिए आप, शमशान से पहले तक का जीवन ही अपना नहीं है, उसके बाद का भी अपना जीवन नहीं है, तो जीव आया है कहीं से जाएगा कहीं पर, बहुत लंबा जीवन है आगे, बहुत लंबा फ्यूचर है, सब फ्यूचर की सोचते हैं जितने युवा हैं, कौन से फ्यूचर की सोचते हैं, कितने लंबे फ्यूचर की सोचते हैं, कब तक की सोचते हैं आप, थोड़ा लंबा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आगे की सोचना पड़ेगा अपने को, अनंत काल आगे की सोचिए, अनंत फ्यूचर है हमारे सामने, ये जीवन पूरा हो जाने के बाद का फ्यूचर क्या होगा, हाँ कहाँ से आए हैं कहाँ जाना है, ये शायद जो लोग सोचते हैं जिनके थिंकिंग प्रोसेस में ये बात चलती है, जिनकी सोच में जिनके चिंतन में जिनके विचारों में जिनके दिलो दिमाग में ये बात चला करती है, सुख कहाँ है आखिर, आखिर सुख कहाँ है, आखिर सुख कैसे मिल सकता है, आखिर मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, जो व्यक्ति वहां तक जाना चाहता है उस सुख तक पहुंचना चाहता है ना, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, वो व्यक्ति संन्यास अंगीकार करता है, कर्म के प्रति भी अपनापन जिसके हृदय में नहीं है, संयोगों को तो अपना मानता ही नहीं है, घर बार के प्रति अपनापन तोड़ दिया है, शरीर के प्रति जिसने अपनापन तोड़ दिया है, शरीर के प्रति अपनापन तोड़ने का नाम है निष्ठात्व का अभाव होना, ये मोक्ष मार्ग और सच्चे सुख की दिशा में पहला कदम है, शरीर के प्रति अपनापन तोड़ना, सारे दुख तकलीफ और संकटों का कारण दिखाई देता है शरीर, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है इसको अपना मानने से, शरीर शत्रु नहीं है हमारा, शरीर के प्रति अपनापन, शरीर को संभालना, शरीर को सजाना संवारना, शरीर का लक्ष्य ये देह है, देह के अपनेपन ये दुख के कारण है वास्तव में, तो बस जिन्होंने ये मार्ग बतलाया है, जो इस मार्ग से चल रहे हैं और जिन्होंने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया है, बस ये तीन तरह के जीव हैं जो पूज्य हो गए हैं, जिन्हें पंच परमेश्वरों के नाम से कहा जाता है जाना जाता है, जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया है वे हैं सिद्ध परमेश्वरी, और जिन्होंने वो मार्ग बतलाया है वे हैं अरहंत परमेश्वरी, और जो बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं वे हैं आचार्य उपाध्याय और साधु, इन तीन बातों के अंदर पंच परमेश्वरी शामिल हो गए, जिन्होंने उस मंजिल को प्राप्त कर लिया है जिसके बाद में दूसरी कोई मंजिल प्राप्त करना शेष नहीं रहा हो, हम उस मंजिल की बात करते हैं, हम राह की बात नहीं करते, हम मंजिल की बात करते हैं, रास्ते की बात नहीं कर रहे हैं, पहुंचना कहाँ है, लास्ट स्टेज कौन सी है, उस अंतिम स्थिति का नाम है सिद्ध दशा, वो अंतिम पद है सिद्ध पद, चरम लक्ष्य है वो सिद्ध परमेश्वरी, आनंद सुखी है, हर शरीरी है, शरीर नहीं होता सिद्धों के, राग द्वेष नहीं होते, कषायें नहीं होती, भूख प्यास का काम नहीं होता, सर्दी गर्मी का काम नहीं होता, खांसी जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, इन सबका जिसके जीवन में अभाव हो गया है, समस्त कर्मों से जो रहित हो गए हैं, संसार से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध परमेश जी, ये तो हो गई लास्ट लास्ट स्थिति। उससे पहले की स्थिति की बात करता हूँ, लास्ट से पहले वाली जो स्थिति है उसका नाम है अरहंत दशा। अब अरहंत दशा की हम बात करें, ये कौन सी दशा है, ये कौन है जो उस मंजिल तक पहुंचने की बात कहते हैं, बतलाते हैं, जिन्होंने वो मार्ग बतलाया है, अरिहंत उपदेश होता है जिनका, चार कर्मों का अभाव हो गया है, समोह शरण की रचना जिनके साथ में है, सब श्रद्धा के भरोसे चलेगा सब काम, ऐसा नहीं चलेगा, बिना श्रद्धा के नहीं चल सकते हैं। नमोकार मंत्र की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, बिना श्रद्धा के काम नहीं चल सकता। सबसे पहली चीजें अरिहंत होते हैं, सिद्ध होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु जी हैं, ये पांच परमेश जी हैं, इनकी श्रद्धा, इन पर इनका विश्वास, अरिहंत ने वो मार्ग बतलाया है और आचार्य उपाध्याय साधु उस मार्ग पर चलने वाले हैं, वे उस मार्ग पर चल रहे हैं, बस जो पूर्ण सुखी हो गए हैं, जिन्होंने सुखी होने का मार्ग बतलाया है और जो सुखी होने के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे ये पांच परमेष्ठी हैं और ऐसे पांच परमेष्ठी पद को मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए इन पंच परमेष्ठियों को मैं भी नमस्कार करता हूँ। ये पंच नमस्कार मंत्र है, साधारण नहीं है, अलौकिक है ये मंत्र, इसमें किसी चीज की कामना नहीं की गई है, चाहना नहीं की गई है, किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, ये मंत्र ही कुछ है। दुनिया में कई तरह के मंत्र होते हैं, ओम रीम श्रीम क्लीम और पता नहीं क्या क्या, और विघ्न विनाशनाय और सर्व सिद्धि और शांति गुरु गुरु और पता नहीं कैसे कैसे शांति प्रदान करने वाले, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं दुनिया में। रणोकार महामंत्र में ऐसा क्या है, निष्काम भक्ति है, निष्काम आराधना है, कामना नहीं है, चाहना नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमारे को, कुछ नहीं चाहिए तो क्यों झुकते हो उनके चरणों में, उन जैसा बनने के लिए, बस तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है, शांत छवि वितराग छवि, मेरे कैसी छवि दिखाई देती है, बोलो कैसा लगेगा वो स्वरूप, कैसा होता होगा अरिहंतों का वो स्वरूप, कैसा होगा मुनिरागियों का वो शांत स्वरूप, कैसा होगा जिस स्वरूप को देख करके जीव स्वयं आकर्षित हो जाते हैं, चेहरे पर कितनी अपार शांति दिखाई देती है मुनिरागियों के, क्रोध रंज मात्र भी नहीं है, न राग का परिणाम है न देश का परिणाम है, अपार अपूर्व शांति जिनके चेहरे से झलकती हो, ऐसे मुनिरागियों के चरणों में अपने आप मस्तक नहीं झुकेगा हमारा, हम नहीं चाहेंगे वो चीज हमें भी प्राप्त हो जाए, हम नहीं चाहेंगे कि वो चीज हमें भी मिल जाए जो उन्हें मिल गया है, जिसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बिजनेस छोड़ दिया, हम जिन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं उन चीजों को जिन्होंने छोड़ दिया है, महावीर भगवान छोड़ करके निकल गए थे, ऋषभ देव से महावीर तक 24 के 24 तीर्थंकर जिन चीजों को छोड़ करके निकल गए, राजपाट को छोड़ करके निकल गए, छह छह खंड की विभूति वैभव को छोड़ करके निकल गए, हम उनको इकट्ठा करने में लगे, हम जिनको इकट्ठा करने में लगे वे उनको छोड़ करके चले गए थे, इससे बात हो गई है, धोखा खा रहे हैं हम, हमें ऐसा लग रहा है, या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं या वो लोग नहीं समझ पाए थे, दोनों में से एक ही तथ्य हो सकता है, हमें तो लग रहा है कि इनमें सुख होना चाहिए और उनको इसमें सुख दिखाई नहीं दिया। मैं गारंटी देता हूँ आप सभी युवाओं से साथियों से कि आप एक बार इस चिंतन के आधार पर सोचेंगे, जैसा मैंने कुछ जो बिंदु आपको दिए हैं, कुछ सोचने के लिए जो मैंने पॉइंट दिए हैं, यदि आप इन पॉइंट्स के बारे में विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कोई एक अलग लक्ष्य होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि आप सारे दुनियादारी के काम छोड़ दे दें, अपना बिजनेस बंद कर दे दें, अपनी दुकान बंद कर दे दें, अपना जॉब छोड़ दे दें, जो काम आप कर रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है उसको सब करें, लेकिन इनसे ऊपर उठ करके भी कोई एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो अंतिम लक्ष्य हो। वही लक्ष्य सार्थक है जिसके बाद में दूसरा लक्ष्य बनाना नहीं पड़े, और वो लक्ष्य अंतिम लक्ष्य, चरम लक्ष्य, परम पद, सर्वोत्कृष्ट पद, जिसके बाद में दूसरा कोई पद स्वीकार नहीं किया जाता, अंगीकार नहीं किया जाता, किसी दूसरे पद की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे पद की चाहना नहीं होती, कामना नहीं होती, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम सुख जिस अवस्था में होता है उस अवस्था का नाम है सिद्ध अवस्था, परमात्मा अवस्था, सिद्ध परमेष्ठी, मोक्ष, मुक्ति, स्वाधीनता, स्वतंत्रता, वो परम मुक्ति। हर छह महीने आज समय में 608 जीवों को हो रही है। दुनिया के किसी न किसी कोने से 608 जीव ऐसे हैं जो हर छह महीने में निर्वाण को प्राप्त कर रहे हैं। उपलब्ध दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया बहुत बड़ी है। बात कर रहा हूँ सिर्फ सुख के संदर्भ में। हमारा लक्ष्य, चरम लक्ष्य वो होना चाहिए इसकी जिन्होंने प्राप्ति की है, जो पूज्य हो गए हैं, जिस विधि जिस प्रोसेस से उन्होंने चीज की प्राप्ति की है, उसी रास्ते पर चल करके हमारे को भी वो प्राप्त करना होगा। रास्ता तो वही है, मंजिल भी एक ही है और मार्ग भी एक ही है, रास्ता भी एक ही है। अब डिसाइड हमें करना है कि हम कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, किधर से जाना है, किधर चलना है, हमारे को कैसे सच्ची हुआ जाए। सेल्फ डिसीजन की बात है, निर्णय हमारे हाथ में है। मैं समझता हूँ कि जो सिद्ध परमेश किए हैं वो पूज्य किस वजह से हो गए हैं, एक तो चरमोत्कृष्ट दशा है, वापस लौट करके नहीं आते, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं वही भगवान बन जाते हैं, वही परमात्मा बन जाते हैं। एक बार परमात्मा और भगवान बन जाने के बाद में दोबारा लौट करके संसार में नहीं आते। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है। जैन दर्शन भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। वितरागी शासन है, पूर्ण वितरागता की चर्चा करता है और वितरागी बना के छोड़ता है। और वितरागता के बिना सुखी भी नहीं हुआ जा सकता, सुखी होने का मार्ग है लक्ष्य, ये सच्चाई का मार्ग है सुखी होने के लिए। आप देख लीजिए, कुछ बातें कही है मैंने आपसे और कुछ आप यदि विचार चिंतन करेंगे, खूब चिंतन कीजिए, दो पांच दिन तक खूब विचार कीजिए, किसी की कोई शंका हो तो मेरे सामने रखिए, किसी को और चीज में सुख लगता हो तो मेरे सामने रखें, मुझे कहें कि भाई इस चीज में तो बहुत सुख है, फिर अपन उसकी थोड़ी गहराई में जाकर के देखेंगे इसमें सुख कहाँ है आखिर। अब मैंने एग्जांपल देकर के बता दिया, आप थोड़ा उसका डिटेल करेंगे अपने अपने सुख रूपी मंजिल का, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि यार वास्तव में इनमें तो सुख नहीं है। यदि इनमें सुख होता तो फिर हम हटने की बात क्यों सोचते हैं आखिर। तो कुल मिलाकर के इनसे छूटने की बात हमारे सामने आएगी, हम ये सोचेंगे कब इनसे छूट जाए, कब इनसे मुक्त हो जाए, कब इनसे फ्री हो जाए। जितना हो सके अपने आप के लिए समय निकालें, जितना हो सके स्वाध्याय के लिए समय निकालें, कुछ पढ़ें समझें, जो देश मुनिराजों ने दिया है, साधु संतों ने दिया है, तपस्वियों ने दिया है, अपने पूरे जीवन का जो निचोड़ निष्कर्ष निकाल करके उन्होंने सामने रखा है, हम यदि उस निष्कर्ष का लाभ उठा सकें तो शायद उतने मात्र से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जो निष्कर्ष उन्होंने दिया है और हम खुद अपने लेवल पर यदि उस चीज को वापस निकालने का प्रयास करें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, शायद बहुत देर हो जाएगी। स्वाध्याय करते समय आपको ऐसे ऐसे तथ्य मिलेंगे, ऐसी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आपने कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था कि अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा है जैन दर्शन। हम तो कुछ और ही समझते थे, हम तो ये समझते थे कि रात को मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, बस इसी का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन में तो बहुत बंधन है, बहुत स्वतंत्रता है, पराधीनता है, बड़े नियम है साहब, अरे बहुत बहुत कठिन है जैन दर्शन का पालन करना, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे इसकी गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे थोड़ा सा पहले में उतरेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे इतना इजी है ये यार, वेरी सिंपल। ऐसे ही नहीं त्याग देते हैं, आसान काम नहीं है, तो बहुत आसानी से हो जाता है ये सब। परेशानियों में जीवन यापन नहीं करते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु, दुखी नहीं है, कष्ट में नहीं है, बेचारे नहीं है, हमें कैसे लगता है, दे क्या रे साधु, कुछ नहीं है इनके पास, मेरे क्या करें। ओहो कितने संकट में भाई, कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं है भाई साहब, कष्ट सहने का नाम साधु दशा नहीं है, कष्ट सहने का नाम संन्यास नहीं है। कष्ट यहाँ मिट जाते हैं वो तो तवस्था का नाम संन्यास है। जंगल में रहकर के सुखी है, जंगली जानवरों के बीच में रहकर के सुखी है, क्रूर पशुओं के बीच में रहकर के सुखी है, जैसा सुख होता हुआ है। कुछ बिंदु रखे हैं मैंने, आप लोगों की यदि कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो वो सादर आमंत्रित हैं।
इसका कोई क्वेश्चन?
पंडित जी बहुत बहुत अच्छा समझाया आपने।
मैंने कुछ ऐसा अच्छा नहीं समझाया है, मैंने तो एक्चुअल में बिल्कुल एक खुली किताब की तरह अपना हृदय खोल करके रख दिया है आप लोगों के सामने, और आप लोगों के सोचने के लिए ये बात कही है। आप लोग विचार कीजिए, कुछ ऐसे बातें हैं जो वास्तव में विचार करने योग्य है। हम सब बुद्धिमान लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे को कहाँ जाना है, कुछ कठिन बातें नहीं है। और मैं बात जो करता हूँ बस शास्त्र की बात तो करते हैं अपन, लेकिन शास्त्र के साथ साथ में कुछ बात ऐसी होनी चाहिए जो कुछ जीवन उपयोगी हो और तर्क की कसौटी पर पक्के सिद्ध होती हो। कहीं भी यदि आपको ऐसा लगता हो कि मेरे द्वारा कही गई बात के अंदर कहीं कुछ बनावटीपन है, कुछ मिलावटीपन है, या वास्तव में इसमें सच्चाई नहीं है, तो अपन डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा ज्यादा। इसे
बहुत बढ़िया बताया,
बहुत क्लियर हो गया अंदर से, और जैसे हम सुनते ही रहे ऐसा ही लगा, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी लिमिट है।
तो आज तो थोड़ा सा मैं बिजी था, एक्चुअल में थोड़ा समय शॉर्ट भी था, और नेक्स्ट वीक अपन समय दे सकते हैं 21 को, क्योंकि मेरा जो 21 वाला जो कार्यक्रम जो था वो थोड़ा जल्दी होकर के 16 को हो गया है। एक स्टूडेंट की एक संगोष्ठी होने वाली थी तीन लोग के ऊपर, तो वो संगोष्ठी 21 को होने वाली थी 9:00, लेकिन वो 16 को हो गई है, इसलिए 21 वाला संडे फ्री है। तो आप लोग जैसा भी चाहेंगे अपन उस दिन डिस्कस कर सकते हैं, और मैं ये चाहूँगा आप लोग यदि बोलते रहें, बात करते रहें तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कुछ रेस्पॉन्स मिलता रहे, कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ तर्क वितर्क हो, तो लगता है कि हाँ कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और कुछ ये कोशिश करें कि आप जो कह रहे हो पंडित जी वो गलत कह रहे हो, हमें तो ऐसा लगता है, तो फिर हम शायद फोर्सफुली उस चीज़ को और गहराई में जाने का है, उसे और अच्छे से समझने समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ना ऐसा?
हाँ
और बतलाएं,
और किसी को कोई क्वेश्चन है
तो अभी
अभी 5 मिनट है तो कोई पूछ सकता है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो।
पंडित जी ये पूछना था कि नवकार मंत्र में जो स्वद्रव्य को प्राप्त करने की बात है ना, उसके बारे में थोड़ा बोले तो।
स्वद्रव्य को प्राप्त करने की बात है?
हाँ, जैसे
कि देखिए प्रणमोकार मंत्र में तो वास्तव में क्या है, पंच परमेश्वरियों को नमस्कार करने की बात है। अब जब उसमें स्वद्रव्य को ही प्राप्त करने की बात की, हम उसमें से निकालेंगे ना, थोड़ी सी खेचतान करनी पड़ेगी हमारे को, डायरेक्टली तो वो निकलता नहीं है। और हो सकता है नीलेश भाई वगैरह ने कुछ ऐसी चर्चा भी की हो, आपसे अंतरोन्मुखी होने की कुछ बात ऐसी कुछ आई हो सकता है। एक्चुअल में क्या, आर्यंत दशा हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, बेसिकली ये सब क्या है, सब अवस्था है। किसकी अवस्था है? आत्मा की अवस्था है, जीव की अवस्था है। आर्यंत भी जीव है, सिद्ध भी जीव है, आचार्य भी जीव है, उपाध्याय भी जीव है, साधु भी जीव है, ये पांचों ही परमेश्वरी आत्मा की अवस्थाएं हैं। तो पंच परमेश्वरी की शरण का क्या मतलब हुआ? अपनी आत्मा की शरण। जिन्होंने अपनी आत्मा की शरण दी वे साधु बन गए, वही अरंत बन जाते हैं, वही सिद्ध बन जाते हैं। इस तरह से अपनी शरण की बात भी उसके माध्यम से जुड़ी जा सकती है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन रखिएगा मेरे लिए नेक्स्ट वीक के लिए।
हाँ।
आप लोगों के क्वेश्चन होंगे ना कहीं कभी मजा आएगा स्वाध्याय में।
बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि मेरे को 2-3 पीरियड लेने हैं फिर बाकी तो फिर वो चलाएंगे। मैं 28 तक हूँ यहाँ, उसके बाद में फिर रक्षण पर्व शुरू हो जाएंगे पर्यवेक्षण। आप लोगों के वहाँ भी शायद कोई कुछ चलाता हो, कोई विद्वान हो, यदि नहीं हो तो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं अपन, हमारा जहाँ चलेगा वहाँ से भी हो सकता है। तो अभी 28 तक तो है यहाँ, तब तक देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग रखिए प्रश्न वगैरह, जो भी आपके डाउट्स हो अपन उनको क्लियर करेंगे और डिस्कस करेंगे।
हाँ,
तो अभी विराम ले रहे अपन यहाँ से।
हाँ, बिल्कुल,
चलो चलिए, ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र,
सभी को जय
जिनेंद्र, जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जय जिनेंद्र,
जिनवाणी
जय जिनेंद्र रखता हूँ।
जिनवाणी करवानी छे?
हाँ, अमीशा, कैन यू प्लीज?
या बधाई पास छे?
હા, અમીશા વાંચે છે, જેની પાસે હોય તે રિપીટ કરે.
યા, બાલગોસ પાઠમાલા 2 માં છે.
ઓકે,
હે જિનવાણી ભારતી તો હી જપો દિન રે, જો તેરી શરણા ગહે તો પાવે સુખ ચેન, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। जिनवाणी मात की जय। ओंकार मंत्र
नौवा, ओंकार मंत्र જય જિનેન્દ્ર, નેક્સ્ટ વીક આ જ સમયે મળીએ આપણે ફરીથી. ઓકે, જય જિનેન્દ્ર.
આ પંડિતજીનું કયા શું નામ છે? એક્ચ્યુઅલી આ અટેન્ડન્સ મેં થોડું લેટ સ્ટાર્ટ કર્યું તો.
સંજીવજી છે ફ્રોમ જયપુર, અને એ ડેઈલી સવારે 9 વાગે સેશન્સ એમને ચાલે જ છે, જે લાભ લે છે હિરજ અને હિનાજી અને બધા. તો એ જ અત્યારે 2-3 વીક્સ આપણે કન્ટિન્યુ કરશે, અને પછીથી નિલેશભાઈ ફ્રોમ 15 સપ્ટેમ્બર એ ડે કવર કરશે.
તો નિલેશભાઈ,
નિલેશભાઈનું સાંભળ્યું આઈ થિંક મેં લિંક
લાસ્ટ વીક
હતું. હા, લાસ્ટ વીક,
તો નિલેશભાઈ
હા 15 સપ્ટેમ્બરથી લેશે કન્ટિન્યુ,
બરાબર?
સારું લીધું તો ને.
હા હા, બહુ ક્લિયર થયું ને, આઈ મીન મજા આવે.
આપણે આ પ્રતિક પાછું યુ સ્ટ્રીમ પર મુકાશે કે કેવું હોય છે?
આ યુ સ્ટ્રીમ પર નહીં, પણ આપણે jainism.us પર આઈ થિંક મેં તમને બધાને ઈમેલ મોકલેલા છે.
હા હા, એટલે એની ઉપર આ રેકોર્ડ.
હા હા, jainism.us પર YJP રેકોર્ડિંગ્સ માં આ બધી ફાઇલ અપલોડ થશે આફ્ટર એવરી સેશન. હું આજે કરી દઈશ, તો
જૈનિઝમ દાચ યુએસ ઉપર જઈને જે ડોનેટ કરવાનું છે ને, એ પેપેલ આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ્સ વર્કિંગ. આઈ ડોન્ટ નો.
Yeah, I had to ask probably Nyati auntie or Rajni uncle because મને બહુ ખબર નથી એ એસઆઈ, તો હું એમને પૂછીને તમને શોર્લી તમને જણાવીશ.
એટલે ક્રેડિટ કાર્ડ થી જે પેમેન્ટ એક્સેપ્ટ કરવા જોઈએ ને એ હવે, એટલે આઈ ટ્રાઈડ કપલ ઓફ ટાઈમ્સ, ઈટ ડીડન્ટ વર્ક. ખાલી જસ્ટ ટુ લેટ યુ નો.
હા હા, રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હા, થેન્ક યુ તમે જણાવ્યું. Yeah, I got a return to merchant. We cannot process, right? So, yeah, હું પૂછી લઈશ તેમને અને તમને જણાવીશ. પ્રોબ્લી એની ઓલ્ટરનેટિવ હોય કે કોઈ બીજા થ્રુ, બીજી સાઈડ થ્રુ કરવાનું હોય તો તમને હું ઇન્ફોર્મેશન આપી દઈશ.
પછી બી અપલોડ થશે ને, આપણે પછી જો કરી શકીએ, બીકોઝ આ છે ને ઇન્ડિયા ટાઈમ છે, તો ઇટ વિલ બી પ્રોબ્લેમ. અહીંયા તો રાત હોય છે, તો આપણે કેવી રીતે અટેન્ડ કરી શકીએ? ન્યૂ સ્ટ્રીમ પર બી છે અને યા jainworld.in પર બી છે, પણ આ લાઈવ જ આવે છે કે આપણે પાછળથી બી એને સાંભળી શકીએ?
ન્યૂ સ્ટ્રીમ પર છે એટલે તો સાંભળી શકીએ આપણે પાછા ફરી.
યા ફરી જે સ્ટ્રીમ પર તો એ લોકો રેકોર્ડ કરશે જ. યા
ન્યૂ સ્ટ્રીમ પર તો કાયમ ફરી સંભળાય.
ઓકે,
યા સ્ટ્રીમ પર રેકોર્ડ કરી બ્રોડકાસ્ટ કરે ટાઈમ જ એ લોકો રેકોર્ડ કરી લે, તો તમે ફરીથી રેકોર્ડ કરી સાંભળી શકો છો.
હા,
અને આઈ થિંક હી હેઝ ઓલસો હેઝ વન સોફ્ટવેર કે તમે યુસ્ટ્રીમ પરથી ડાઉનલોડ બી કરી શકો છો.
હા,
એટલે ડાઉનલોડ બી થઈ શકશે. આ તો આ છે,
એના માટે સોફ્ટવેર જોઈએ ને ડાઉનલોડ કરવા?
હા, એના માટે એક સોફ્ટવેર જોઈએ કે તમે યુસ્ટ્રીમ ની લિંક ડાયરેક્ટ તમે એના પર મૂકી અને યુસ્ટ્રીમ ના કોઈ પણ આપણે જે હોય વિડીયો તો ડાઉનલોડ બી કરી શકો છો તમે.
સો આઈ ટ્રાય
ટુ પ્લે સમ મોર. બરાબર, ઓકે.
Okay.
Yeah.
Okay, Jai Jinendra.
Jai Jinendra.